ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को टाइटल्स भी दिए हैं और साथ साथ सेवा के लिए भी डायरेक्शंस दिए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे महावीर और महावीरियां हो, तुम्हारा ही यादगार और तुम बच्चे इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हो। दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं कहता है कि इनकॉग्निटो वॉरियर्स वो तुम बच्चे ही हो। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान करना है, जिसके लिए लौकिक में भी भक्ति में भी पहले गाते आए हैं, धन दिए तो धन ना खुटे। तो बाबा ने कहा जितना आप दान करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने युक्ति बताई कि परिचय देना है बाप का। शुरू शुरू में जब परिचय देने जाते थे, ज्ञान सुनाने जाते थे, तो लोग सुनते नहीं थे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। बाबा ने कहा उनको बोलो कि हम कुछ नहीं आपको कहना चाहते हैं, कि केवल एक परमात्मा का संदेश देना है। वो संदेश है कि परमात्मा को याद करो। जिसको बाबा ने कहा उन्हें कहो कि परमात्मा कहते हैं केवल मुझे याद करो, बस इतना ही संदेश दो और ज्यादा नहीं दो, सुने या ना सुने। बाबा ने कहा कि आगे चलकर के बहुत आएंगे और बहुत ये ज्ञान सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनाने के लिए या सेवा के लिए बच्चों को सुस्ती नहीं करनी है और सदा तैयार रहना है। बाबा ने ये भी याद दिलाया कि जब भी कोई भाषण करते या कोई सेवा करते हो, उसमें ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसका भी जरूर बताना है। क्योंकि परमात्मा जो आते हैं वो केवल संगम युग पर ही आते हैं, दुनिया इसको नहीं जानती है। तुम बच्चों को ये भी जरूर बताना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 17 नवंबर 2025। मुरली का मुखी हैडी मीठे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अभी नई बन रही है। तुम अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। मुझे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। आज का प्रश्न है सर्वसेवल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती। सर्वसेवल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। इसके उत्तर है उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान रतन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं, लेकिन अगर खुद कोई भी अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उम्र आ नहीं सकता। बाबा ने दो बातें कही, एक तो वो दान करते रहेंगे, दिन रात सेवा करेंगे। बाबा के टाइम पर ऐसे भी बच्चे थे, इतनी सेवा करते थे थक जाते थे तो भी करते रहते थे। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर कोई भी अवगुण होगा, चाहे कितनी भी सेवा कर लेंगे लेकिन उसका प्रभाव तो नहीं निकलता ना, तो बाबा ने कहा कोई भी अवगुण होगा तो उम्र उत्साह नहीं रहेगा। लेकिन वे खुटने कोई भी अग्नि होगा तो सर्विस करने का भी उम्र आ नहीं सकता है। और श्रीमती मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाती है, बच्चे जानते हैं, परम पिता रोज रोज समझाते, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते। बाबा भी टीचर हैं, तो बाबा कहते जैसे टीचर रोज रोज पढ़ाते हैं, ऐसे बाबा भी रोज रोज पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर सुनाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप को तो घर में ही बच्चे रहते। बाबा क्या कहते हैं, बाबा और टीचर के काम में अंतर। बाबा बच्चों को पढ़ाएंगे, बाबा बच्चों को नहीं, बाबा बच्चों को संभालेंगे, शिक्षा देंगे, टीचर ही उनको पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते, बच्चे कहाँ रहेंगे, माँ बाप के साथ। यहाँ तो वायु ये वंडरफुल बात है, वहां पर टीचर अलग है, माता पिता अलग, फैमिली इकट्ठे रहती है। बाबा कहते यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के तो घर में सब बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ यहाँ रहते हैं, यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो, पढ़ते भी हो रहते भी हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते, दो स्थान बताया, संगम युग पर बाबा के पास हम रहते हैं और दूसरा मूल वतन में हम बाबा के पास रहते हैं। फिर कलप में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने व सुख शांति का वर्षा देने। तो जो नीचे आकर के आते होंगे ना, वर्षा देना है, बच्चे नीचे हैं, तो बाबा जरूर नीचे आते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मंशारा है, गायें भी हैं कि साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ, तुम बच्चे जानते हो, सूर्य बताते हैं कि मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जो हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं, सब कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कलप कलप पतितों को पावन बनाने की। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, कलप कलप बच्चों को पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली। अब बाबा को ये ड्यूटी किसने दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन बच्चे पुकारते हैं बाबा को, रहम आता है, बाबा कहते देखो मेरे को ये ड्यूटी मिली है। बाप कहते हैं मुझे कलप कलप पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चे, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना ही है, पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। गुना पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने बाप आए हैं, कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। ये तो समझ की बात है ना, कितना भी नई कंस्ट्रक्शन करे, नया सब करे, कुछ भी नई नई इन्वेंशन करे, तो बाबा कहते फिर भी इसको नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, ये तो समझने की बात है। कल जो है पुरानी दुनिया, बाप पे आएंगे जरूर पुराने और नए के संग्रह पर। जब कहां पे तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो तो संगम युग पर हो तब तो समझाते। समझाता कैसे है, क्योंकि बाबा कहते खुद समझ है तो बाबा कहते तब तो समझाती हूँ, मुख्य बात ही है संगम मुख्य, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। बाबा देखो कैसे बता रहे, क्या समझाना है कि कैसे समझाना है, पॉइंट्स संगम का भी महत्व बताना है, पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है, जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। संगम युग को कोई नहीं जानते हैं तो बाबा कहते जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था कि ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। कभी कभी लिख देते थे संगम युग, या बोलने में बाबा हमेशा करेक्ट करते थे, बाबा कहते थे ये लिखो कि पुरुषोत्तम संगम युग है, कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है, नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं, उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग के लक्ष्मी नारायण के ऊपर कौन सा अक्षर चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग। कब पुरुषार्थ किए और कब बने तो वो समझा सकते हैं, उनके ऊपर ये अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग। ये जरूर लिखना है क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तो समझाना पड़े कि नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये है पूरी निशानी। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र हो तो उनको बताओ ये नई दुनिया के मालिक हैं और कैसे बने, ये पूरी निशानी है, ये है पूरी निशानी। तुम कहते हो कि इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है ना, मैं जब आया अज्ञान नींद से जाओ, हमें याद आता है हम शुरू शुरू में गीत बनाए हुए थे, और खास करके जब प्रभात फेरी अमृत वेले युग के बाद प्रभात फेरी निकालते थे उसमें गीत बजता था कि नव युग आया कि आया, जागो अज्ञान नींद से जागो, और खास करके स्लोगन भी बोलते रहते थे जागो जागो परमात्मा आया है अज्ञान नींद से जागो, तो लोग उठ करके अपने ही कमरे के बाहर आंगन में खड़े हो जाते थे, या छत पर या फिर कमरे के बाहर जो गैलरी उसमें खड़े हो जाते थे, वो देखते रहते थे। तो बाबा कहते हैं गीत में है ना कि नवयुग आया अज्ञान नींद से जागो, ये तुम जानते हो कि अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि है, संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, देवताओं में भी उत्तम पद है किसका, देवताओं में भी ऊंच पद है किसका, इन लक्ष्मी नारायण का, ये भी तो है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण कौन सा है? आज बाबा ने कहा सबसे उत्तम गुण है पवित्रता, सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। पवित्र है तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में उनको धारण होगी जो सर्विस करते होंगे। बाबा कहते ज्ञान की मनन की बातें किसको ध्यान धारण रहेगी, जो सेवा करते हैं, सेवा के प्लान बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं इस सब पॉइंट्स उनको धारण होगी जो सर्विस करते रहते होंगे। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे, बहुत समझाएं मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती और कोई में नहीं होती। बाबा बच्चों का चार्ट तो जानते हैं ना, भले ऊपर से नहीं मालूम पड़ता है लेकिन बाबा तो जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई में धारणा अच्छी होती कोई में नहीं होती, जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर ही अंदर परेशान है तो कैसे संभालेंगे। तो बाबा कहते जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में सीधे सीधे अक्षजे, सीधे सीधे कौन से, आज बाबा बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग को तो मुख्य समझाना चाहिए, तब वो समझेगी ना कि परिवर्तन कैसे होता है। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए, इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है। अब बाबा बता रहे हैं कि जब ये धर्म था तो उस समय और कोई धर्म नहीं था, और महाभारत लड़ाई का भी जो बताते हैं बाबा कहते वो भी ड्रामा में नोंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़े थे, 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते। अब थोड़े टाइम से इतने बॉम्ब्स आदि तैयार हो गए, इन्वेंशन होती जाती, कितना टाइम चलेंगे, थोड़े ही टाइम में खत्म हो जाएंगे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते। समय को भी कम से कम कितना वर्ष चाहिए, 100 वर्ष चाहिए। 100 वर्ष क्यों, पहले तैयारी करना है, बच्चे तैयार हो जाएं, फिर उसी में ही प्योरिफिकेशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं संगम युग को भी कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, सारी दुनिया नई बनी है, नई दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा, उस समय तो कम था ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, अभी तो इतना फास्ट करते ना। तो बाबा कहते नई दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा, तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी, कुछ तो रहती है, प्रलय होती नहीं, जब प्रलय होती है तो कुछ रहता है, उससे फिर वो नई दुनिया तैयार होती है। तो पुरानी खलास हो जाएगी, कुछ तो रहती है, प्रलय तो होती नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में है, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर भी यही होंगे, यही देवी देवता थे, फिर नई दुनिया में यही होंगे। ये है राजयोग की पढ़ाई, अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, कोई समझा नहीं सकते और कई ऐसे सुनना नहीं चाहते हैं, तो बाबा कहते एक बात बोलो, कौन सी, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं। तो बाबा ने कहा केवल आप एक ही बात समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उसको सब याद करते हैं। वे हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाओ, उनकी बात उनको सुनाओ कि तुमने पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, तब वो क्या बताते हैं, पुकारते भी है हे पतित पावन आओ। बराबर हम बच्चों को कहते हैं तुम सब पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो कि पतित पावन आओ। अभी सब कलयुग में है पतित, सचयुग में पावन होती है। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित देह के सब पतित संबंध छोड़ मां एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये भी गीता की अक्षर है। गीता पढ़ते उनको ही बताओ, उसमें लिखा है ना कि माम एकम याद करो, तो बाबा कहते हैं परमात्मा क्या कहते हैं, एक परमात्मा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये भी गीता के अक्षर है भी गीता का युग। गीता संग्रह रूप पर ही गायी हुई थी, जबकि विनाश हुआ था और बाप ने राजयोग सिखाया था, राजय स्थापन हुई थी, फिर जरूर स्थापन होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना, तो बाबा कहते ये सब बाबा ही समझाते हैं, ये सब रूहानी बाप समझाते हैं ना, चलो इस तन में न आए और कोई नहीं तो आएगा ना। शुरू में ब्रह्मा तन के लिए बहुत बहस करते थे, तो बाबा कहते उनको बोलो अच्छा कोई बात नहीं। कभी कभी बाबा के बच्चे इतने समझदार थे तो उनको कहते थे अच्छा कोई बात नहीं है, बाबा भल नहीं आवे इस तन में, बोलो तुम्हारे तन में आवे, तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे तन में नहीं है, हम भी तो पतित हैं। तो फिर जिस तन में आए किसी को तो एक्सेप्ट करोगे ना, तो बाबा कहते हैं चलो इस तन में न आए कोई और भी आए, समझाने तो बाप की है, चाहे इस तन में आए चाहे किसी में आए, तो बाबा की तो समझाने तो बाप की है ना, हम इनको तो नाम नहीं लेते हैं। ज्ञान सुनाते थे उनको बताओ कोई, हम इनका नाम थोड़े ले रहे हैं, हम तो इनका नाम नहीं लेते, हम तो सिर्फ बतलाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो, जो धारण करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए, कौन सा, कि बाबा को याद करना, ज्ञान को धारण करना, चक्रवर्ती राजा बनना। बाबा कहते हैं तो मैसेज सब धर्म वालों के लिए, घर में तो सबको जाना ही है, हम भी तो घर का रास्ता बताते हैं, पुकारते रहते ना मुक्ति जीवन मुक्ति में ले चलो, तो बाबा कहते घर में तो सबको जाना, हम क्या करते हैं, केवल घर का रास्ता ही तो बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो तो उनको बाप का संदेश दे सकते हो, तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए, कौन सा, कि बाबा हमें मिले, बाबा हमें पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते किसी को भी संदेश दो तुम्हें खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको यही याद कराओ, कुछ संदेश नहीं दो, केवल एक बात याद कराओ कि परमात्मा क्या कहते हैं, मुझे याद करो, सभी को यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर वन सर्विस है, बाप का पैगाम सुनाना ही कौन सी सेवा है, नंबर वन सर्विस है। हम बाप का पैगाम दे सकते हैं, गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। बाबा क्या करते थे, जब प्रदर्शनी लगाते थे ना तो बाबा ने पहले ही कह दिया था कि पहला पहला चित्र जो है शिव बाबा का रखो और बाबा का पैगाम दो, और बाबा का रखो आत्मा का रखो, जब तक वो ना समझे तब तक आगे ले भी नहीं जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बाप आए हैं इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं बाप का पैगाम दे सकते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। उस समय क्या था, बड़ी मुश्किल तैयार होते थे, क्यों, वो कहते थे हम बोल नहीं सकते, हम कैसे बताएं बाबा, हमको समझाना नहीं आते। बाबा ने कहा एक ही बात तो बोल सकते हैं ना कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बाप का पैगाम दे सकते हैं वो उन्हें तैयार रहना चाहिए, दिल में भी आना चाहिए क्या बात, हमें अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो, कौन सा, कि बाबा को याद करो, ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर डरते हैं, उस समय डरते थे, आजकल बीके के नाम से बहुत खुश होते हैं और भिक्की के पास आना भी चाहते हैं। तो बाबा कहती हैं, भिक्की का नाम सुनकर डरते भी हैं, बोलो हम क्या सुनाएंगे, हम तो सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहती हैं, मुझे याद करो बस, और क्या करना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस, हम किसकी ग्लानी नहीं करते हैं। बाबा ने सेवा की कितनी अच्छी युक्ति बताई, उनको बोलो हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस, हम तो किसकी ग्लानी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, मैं ऊंच से ऊंच पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये नोट करो। कौन सी बात कि केवल सबको क्या बताना है कि बाप को याद करो, ये नोट करो। ये बहुत काम की चीज है, हाथ पर वो बाह पर अक्षर लिखवाने हैं। शुरू में लोग क्या करते थे, हाथ पर बाह पर कुछ ना कुछ वो लिखवा लेते थे। तो बाबा कहते क्या लिखवाना है कि बाप कहते मुझे याद करो, बस इतना ही। हाथ में वहां पर अक्षर लिखवाते हैं ना, तो ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। बाबा रहम दिल कल्याण के किसको कहते, जो केवल बाबा का ही परिचय दे, बस बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने, अपने से प्रेम करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। बाबा के पास शुरू में जब आते थे और बाबा भी कहते थे कोई भी आपके पास आएगा तो उसको कम से कम लक्ष्मी नारायण का चित्र दे दो, ये सौगात दे दो, समझाओ दो लाइनें और चित्र दे दो। चित्र भी दे सकते हो, ये है पैगाम देने की चीज। या तो शिव बाबा का दो, शिव बाबा का चित्र भी बहुत पसंद करते हैं, किरणों वाला और लाइट वाला बहुत पसंद करते हैं, बहुत आते हैं। और जो नाइट लैंप है रात का, वो भी शिव बाबा वाला बहुत लेकर के जाते हैं। तो बाबा कहते इतना भी पैगाम दिया तो बहुत है। ये है पैगाम देने की चीज, लाखों बन जाएंगे। देना शुरू करो, बांटना शुरू करो, डिमांड बढ़ती जाएगी और बाबा कहते लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है, पैसा कोई दे या ना दे। बाबा को हमेशा होता था पैसा कोई दे या ना दे, अब सेवा करो, देने वाले आप ही आ जाएंगे, जो होगा समझेगा वो आप ही आकर के करते हैं। आप हमको याद आता है, दादियां सुनाती थी जापान में गए थे, वहां जाकर के झाड़ का चित्र लेके गए थे, उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कितने हजारों का चित्र बनवा करके दे दिए। तो बाबा कहते हैं कोई पैसा दे या ना दे, बोलो बाप तो गरीब निवास है, हमारा फर्ज है घर घर में जाकर पैगाम देना, ये बाप दादा है, इनसे ये वर्षा मिलता। क्या ये बाप दादा है और लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिलता है, ये बाप दादा इनसे ये वर्षा मिलता है, 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। उनको जाकर के बताना है कैसे पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर जाकर के देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो अकेला नहीं होगा, अब ब्रह्मा है वो अकेला तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी होंगे, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जो ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्राह्मण है विष्णु सो देवता, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो देवता, ब्राह्मण है चोटी वही देवता, क्षत्रिय वैश शूद्र बनते हैं, कुछ जो निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। बाबा कहते ऐसे भी आएंगे जो इन बातों को समझेंगे, कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं माताओं के लिए, बाबा कहते थे भाई भी कर सकते हैं और दोनों मिलके करते ही रहते हैं। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं, बाबा सुनाते थे, साकार में बाबा सुनाते थे, तो बाबा जब शुरू में उठ करके दुकान खोलते थे तो बाबा भी जैसे भक्ति करते थे और सुबह उठ करके वो क्या बोलते, सिंधी में बोलते थे, सुबह का साई बेड़ा लगे लाए, गंड का मूड़ा गुड़ा मत का मूड़ा, ये सिंधी में। वो सुबह उठते ऐसा ग्राहक भेजना जिससे अच्छी आमदनी हो जाए, कम बुद्धि का हो, भी जितना हम दें पैसा बहुत पैसे वाला आए और जो हम कहें वो ले करके जाए। वैसे भी दुकान पर देखते हैं पहली पहला कोई ग्राहक आते हैं तो कैसे भी करके उसको देते हैं, कहते पहला पहला तुम ग्राहक हो, तुमको लेके ही जाना है, कितना भी वो कहेगा महंगा थोड़ा कम करके भी दे देते हैं। तो बाबा कितनी भक्ति में ऐसे गाते रहते हैं। तो फिर तुम बच्चों को क्या करना है, सुबह उठ करके ये बाबा से बात करनी है कि आज ऐसे बच्चा मिले जिसको मैं इतना ज्ञान रत्न दूं, इतना ज्ञान रत्न दूं, वो बाबा का बन जाए। तो ये बात करनी है। जब सुबह उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साइन, तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। अब दुकान पे चले जाओ, उसको बोलो तुम कुछ नहीं करो, एक ये बाबा का संदेश ले लो, तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तो साईं को याद करो तो 21 जने का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले के बाद सुबह सुबह कई लोग जाते हैं, जाके संदेश देते हैं, कईयों को बहुत अच्छा लगता है कि आज हमें परमात्मा का प्यार भरा वरदान मिला है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं, ये बैज बनाना भी बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाबा के बच्चे करते भी ऐसे थे, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, बाबा कहते तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, तुम भी यही करो, एक परमात्मा को याद करो। हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट के आत्मा भी उनका ही बच्चा था। क्राइस्ट ने क्या कहा था, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड इज वन। तो बाबा कहते क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा था, बहुत ऊंचा था। बाबा कहते सभी आत्माएं तो उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि कोई भी देहधारियों को याद मत करो, किसी को भी समझाओ तो बताओ सभी आत्मा उनके बच्चे हैं। और वही गॉड फादर कहते हैं कि कोई भी देहधारियों को याद मत करो, तो अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं कि हम मुक्ति को पाएं, तो बाबा कहते परंतु जाता कोई नहीं है, मेरे पास तो आ ही नहीं सकते हैं। देखा जाता है अभी बच्चे बहुत ठंडे हैं। बाबा चार्ट भी सुना रहे, एक तरफ सेवा करते हैं, उस समय थोड़ा वो कुछ ना कुछ संकोच करते थे ना, तो बाबा को कहना पड़ता है अभी नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा दौड़ते रहते हैं। उस समय बाबा ने क्या चार्ट दिया, देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना करते रहते हैं, इसमें भी बहुत सहन करना पड़ता है। धर्म की स्थापना करना, सेवा करना कोई सहज थोड़ी है, बहुत सहन करना पड़ता है। धर्म संस्थापक को भी कितना सहन करना पड़ता है, क्राइस्ट के लिए भी कहती है, उनको क्रॉस पर चढ़ाया, तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं, कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं कि धारणा नहीं, कमजोर है ना, तो बाबा को पता पड़ जाता था। तो बाबा चार्ट सुना रहे, कोई सर्विस नहीं करती तो बाबा समझते हैं कि धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो, ट्रेन में भी तुम पैगाम देते रहो। उस समय तो अभी तो ट्रेन में बैठते हैं तो लोग सुनना चाहते, उस समय बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी, आपस में दो तीन बीके बैठे हैं तो उनको सुनाना शुरू कर दे, ये क्या है, इस चित्र में ऐसा क्यों है, क्वेश्चन पूछे, वो ज्ञान सुनाए, तो धीरे धीरे ट्रेन में उस कंपार्टमेंट में बैठे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, कोई इकट्ठे हो जाते थे, कोई सुनते रहते थे, तो इसी तरह से उनके कानों में भी कुछ न कुछ संदेश चला जाता था। तो बाबा कहते हैं ट्रेन में तुम पैगाम देते रहो, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी तो जाएंगे ना, कोई शांति धाम में जाएंगे रहेंगे और कोई स्वर्ग में जाएंगे, दोनों में जाएंगे, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो, तुम ब्राह्मणों को तो जाना चाहिए, हैं तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ रखेंगे, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण होगा ना, आदि में है ब्राह्मण। चित्र में बाबा कहते ब्राह्मणों को कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि आदि में है ब्राह्मण, यही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य बनते फिर ब्राह्मण बनते, आदि में है ही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ही ऊंचते ऊंचो, वह ब्राह्मण है कुख वैश्यावली, ब्राह्मण तो जरूर ऊंच चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कहाँ गए, ब्राह्मणों को तुम वैश्य समझाओ तो वह झट समझ जाओ जाएंगे, ब्राह्मणों को तुम वैश्य समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे, बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते, देखो युक्ति, ऐसा नहीं हम भी ब्राह्मण है, बाबा ने कहा हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, मीन्स हम क्या क्या करते वो सुनाना होता है, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन, ब्राह्मण के सिवाय और कोई का नाम नहीं लेंगे, उनको जब पूछेंगे ना ब्राह्मणों को, वो भी ब्रह्मा का नाम लेंगे तो हम भी क्या ब्रह्मा का नाम लेंगे, तो ब्रह्मा के सिवाय और कोई का नाम नहीं लेंगे, तो ट्रायल करके तो देखो ना, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, अजमेर में दो प्रकार के, एक है सारनाथ मंदिर बनारस की तरफ, एक है अजमेर की तरफ पुष्कर, वहाँ के ब्राह्मण वो पुष्कर ब्राह्मण कहलाते हैं और वो सारनाथ वाले कहलाते हैं। बाबा ने कहा अजमेर, उस समय ट्रेन जो है ना अजमेर की तरफ ही जाती थी, अभी भी तो अजमेर में कई बच्चे उतरते थे मंदिर देखने के लिए, तो बाबा क्या बता रहे हैं, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम किसी भी ब्राह्मण से मिले ना, जाते थे देख के आते थे, बस से देख करके आ जाते, कोई समाचार नहीं दिया बाबा को कि हम मिले, उन्हें क्या ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने कहा अजमेर में ढेर बच्चे जाते, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको तो मालूम है ना सच्चे ब्राह्मण कौन है। तो बाबा ने युक्ति बताई ब्राह्मणों को समझाने की, तुम बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, उनको भी बोल सकते हो कि तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्रों पर भगत भी जाते हैं, ये चित्र तो बहुत अच्छा है, कौन सा, आज बाबा बार बार लक्ष्मी नारायण के चित्र का बता रहे, और लक्ष्मी नारायण के चित्र एक ट्रांसलाइट का हिस्ट्री हॉल में अभी भी बना हुआ है, बाबा को बहुत अच्छा लगता था, बाबा आते थे ये ट्रांसलाइट का चित्र ऑन कर दिया जाता था, तो बाबा उस पर भी बहुत प्यार से बच्चों को समझाते थे। तो बाबा कहते हैं ये चित्र तो बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण का है। तुमको मालूम है कि जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है? ऐसे ऐसे तुम नौकरों को भी, भीड़िया आदि को भी समझा सकते हो। सेवा पब्लिक की भी करनी है, ब्राह्मणों की भी करनी है, और जो आम जनता है, जैसे नौकर है, भीड़िया, इनको भी समझा सकते हो। तुम्हारी विगत तो कोई नहीं जो उनको ये समझाए। ये भी बाबा की तो, और तो नहीं समझाएंगे ना। तुम्हारी बगैर और कोई भी नहीं जो उनको सुनाए। बहुत रहमदिल बनना है, बोलो तुम भी पावन बन, पावन दुनिया में जा सकते हो। बाबा को ये होता था, इन सबको भी देना है, ज्ञान देंगे, ज्ञान सुनेंगे, वहां आएंगे तो उनको भी बोल सकते हो, तुम भी पावन बन, पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए सेवा का, बाबा कहते बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन सेवा के शौक में अभी क्या करते, बहुत ज्यादा ज्ञान देते। आज जो बाबा ने कहा शॉर्ट ज्ञान दो आत्मा का और बाबा का, तो बाबा कहते उससे उनको प्रभाव भी पड़ेगा, बुद्धि में बैठेगा। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। ये खुद याद करते होंगे, वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जानते, बाप तो नहीं जाएंगे, बाप थोड़ी बात करेंगे। बाबा कहते बाबा जाएंगे क्या? बाबा तो नहीं जाएंगे जगह जगह, बाबा जाकर के लोगों से थोड़ी बात करेंगे, ये तो बच्चों को ही करना है। बाप तो नहीं जाकर के बात करेंगे, ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना, नौकरों का, गरीबों का, भेलियों का भी, सबका कल्याण करना, गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे, बाबा कहते जब उनको ज्ञान सुनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करेंगे, हर प्रकार की खुशी आ जाएगी, बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए, ये तो अच्छा है ना। कम से कम वो बाबा को याद करेंगे, प्रजा में आ जाए तो भी तो ये अच्छा है ना। हाँ, प्रजा में भी सत्युग में आना ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। प्रजा में आ जाएंगे, आ जाना तो बहुत अच्छा है ना। ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा, और अभी कितना जोर से आवाज निकलता रहता है ना, कितना चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी का नाम बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा ने उस समय कहा था कि तुम्हारा आवाज आगे चल निकलेगा, दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सभी को यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम ऊंची ऊंची बच्चे कौन हो, अब अपने टाइटल याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्म पदम भाग्यशाली, पहला टाइटल पद्म पदम भाग्यशाली हो। जबकि मैंने सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई भी बात की फिक्रात नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तो फिर बाबा इतनी महिमा करती हैं, फिर किसी भी बात की फिक्रात क्यों रखते हो, चिंता क्यों करते हो? तो बाबा कहते कोई भी फिक्रात नहीं रखनी चाहिए। कोई भी फिक्रात आगे क्यों रखनी चाहिए? ये है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। ज्ञान भी गुप्त और खुशी भी गुप्त, ये है गुप्त ज्ञान और गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बाबा फिर दूसरा टाइटल, खुशी भी रहे और गुप्त खुशी रहे, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, इनकॉग्निटो एंड अननोन वॉरियर्स कहेंगे। और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा याद है। तपस्या करते हैं, फिर प्राप्ति क्या होती है। बाबा कहते ये भी यादगार है, तुम्हारा दिलवार माना मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना, दिल लेने वाला बाबा और उनके बच्चे परिवार है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर महावीरिया और उनकी औलाद ये पूरा पूरा तीर्थ है। दिलवाड़ा भी देखने आते तीर्थ है, और बाबा क्या कहते महावीर महावीरिया और उनकी औलाद सब बच्चे ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई, बाबा हमेशा कहते थे ये आबू अब्बा का घर सर्व तीर्थों से महान है, जो शांति स्तंभ पर भी लिखा है। तो बाबा कहती है तो ये क्या हुआ, काशी से भी ऊंची जगह हुई। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है, सर्विस करने का प्रण करो। बाबा ने कहा शौक रखना चाहिए, सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। वरदान कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बन देखो, हिम्मत तो उल्लास में रहे स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रहे स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, बहुत तूफान आते ना तो स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याण करे बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। कल्याण करे बाप और समय के हर सेकंड का लाभ उठाओ। स्लोगन बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएं। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेह बनने की विधि है बिंदी लगाना, विदेही बनने की विधि है बिंदी लगाना। अशरीरी बनते हो कर्मतीत बनते हो, सबकी विधि है बिंदी लगाना। इसलिए बाप कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, ऋण भान करते, जब भी पहले कर्म में आते हो तो पहले तीन बिंदुओं का तिलक मस्तक पर लगा। उस दिन भी बाबा ने अव्यक्त मूल्य में तीन बिंदियां बताई, आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और तीसरा कौन सा है, हाँ स्टॉप देना, फुल स्टॉप है, स्टॉप की बिंदी। तो पहले तीन बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं सकता है, अविनाशी है, अमिट तिलक रहेगा, अविनाशी अमिट तिलक रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जो भी भाई बहने अशांति मन से कल रात को आए हैं या सुबह आए, हाथ खड़ा करें, बहुत है। देखो बाबा के घर में कितने बच्चे आए, नीचे कर्नाटक जोन का टर्न है और पार्टी में चेन्नई और इंदौर जोन के भी आए हुए बहुत से आए हैं। अच्छा, सभी के लिए एक सूचना है, जो भी भाई बहने शांतिवन से एक रात या सुबह के लिए आए हैं, सबका नाश्ता और दोपहर का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, नीचे कारोबार चल रहा है वहाँ प्रबंध नहीं होता है, इसलिए सबको भी सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद ऑन द डबल फॉरन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। ऑप्शन